राधिका की तबीयत खराब हो जाने के बाद से इशिका अभिमन्यु के साथ अस्पताल में थी। अभिमन्यु और इशिका हॉस्पिटल की डाइनिंग एरिया में थे। तब इशिका ने अभिमन्यु को वो तस्वीर दिखाई। अभिमन्यु से तसल्ली दे रहा था कि जरूर उसकी फैमिली काफी पावरफुल रही होगी, क्योंकि तस्वीर में जिनकी शक्ल इशिका से मिल रही थी वो काफी रौबदार लग रही थी। उनकी बातें जब अरमान ने सुनी तो वो उस तस्वीर को देखना चाहता था। वैसे भी अरमान दिल्ली से बिलोंग करता था और वहां के सभी अमीर परिवारों से वो अच्छी तरह वाकिफ था। इससे पहले कि अरमान तस्वीर देख पाता, उसने एक नज़र इशिका की तरफ देखा जो उसे जानी पहचानी सी लगती थी। तभी इशिका ने अभिमन्यु से पूछा, मिसेस सिंघानिया को होश कब तक आएगा? अभिमन्यु को इस बारे में कुछ नहीं पता था। अरमान ने इशिका की बात का जवाब देते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें लगभग आधे घंटे में होश आ जाएगा। अचानक इशिका अपनी चेयर से खड़ी हुई और उसने जल्दी से अभिमन्यु से कहा, तब तो मुझे उनके सामने होना चाहिए। जब वो बेहोश हुई थी तब मुझे कुछ बताना चाहती थी, मुझसे बात करना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि जब वो होश में आए तो मैं उनके सामने रहूँ। एक पल में इशिका के चेहरे पर उम्मीद की किरण थी, लेकिन वो फिर से उदास हो गई। उसने धीरे से कहा, लेकिन वो लोग मुझे अंदर नहीं जाने देंगे। अभिमन्यु ने इशिका का हाथ सहलाकर कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं इंतजाम कर दूंगा। इशिका को अब डिनर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। वो जल्दी से राधिका के कमरे की तरफ जाने लगी तो वहीं अभिमन्यु भी उसके पास साथ जा रहा था। वो अरमान के पास रुक गया। अरमान ने अभी तक फोटो नहीं देखी थी। अभिमन्यु ने तस्वीर को अरमान के हाथ से छीन लिया और फिर इशिका के पीछे चला गया। अभिमन्यु की इस हरकत पर अरमान के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल थी। वो धीरे से बोला, ये लड़का कितना घमंडी है, जता तो ऐसे रहा है जैसे मुझे इसकी हेल्प करनी है, जबकि खुद इसे मेरी मदद की जरूरत है, फोटो तक ठीक से नहीं देखने दी। अभिमन्यु की तरफ देखते हुए अरमान अभिमन्यु के बारे में सोचने लगा। वो दोनों लंदन की एक ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे। अभिमन्यु हमेशा से काफी इंटेलिजेंट था। जब अरमान ने अभिमन्यु के बारे में अपने चाचू केशव को बताया तो वो यही चाहते थे कि अरमान उससे दोस्ती करे। जब अरमान और अभिमन्यु की नहीं बनी तो केशव चाहते थे कि उनके साथ पर्सनल रिश्ते जोड़े जाएं, लेकिन बदकिस्मती से उनके घर में कोई भी लड़की नहीं थी। उन्होंने अपने रिश्तेदारी में अभिमन्यु की शादी करवाना चाहती थी, पर अभिमन्यु ने कभी हाँ नहीं कही। अरमान टेबल पर बैठा और अपनी कॉफी पीने लगा, तभी उसके मोबाइल पर किसी का मैसेज आया। उसने चेक किया तो वो केशव का मैसेज था। तुम आज रात मिसेस सिंघानिया से मिलने जाने वाले थे, कुछ बातचीत हुई, कैसी है वो? केशव ने पूछा। अरमान को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। अगर वो केशव को वहां की सिचुएशन के बारे में बताता तो इन सभी हालातों का जिम्मेदार केशव अरमान को ठहराता। उसने बिना जवाब दिए ही मैसेज को छोड़ दिया और फिर वहां से मिसेस सिंघानिया के रूम की तरफ जाने लगा। अभिमन्यु ने पहले ही पृथ्वी को एक मैसेज छोड़ दिया था ताकि वो इशिका की सिक्योरिटी का इंतजाम कर सके। जैसे ही इशिका और अभिमन्यु आगे गए तो उनके सामने चार सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे जो नॉर्मल बॉडीगार्ड से थोड़े अलग थे। उन्होंने इशिका की तरफ देखा और एक सुर में कहा, गुड इवनिंग मिसेज राजवंश। इशिका ने सिर हिलाकर उन्हें धीरे से गुड इवनिंग कहा। वो कुछ समझ पाती उससे पहले अभिमन्यु पीछे से आया। उसने इशिका को बताते हुए कहा, इन सबका बैकग्राउंड स्पेशल फोर्सेस से है, तुम्हें आज मिसेस सिंघानिया के कमरे में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, उनके होते हुए तो बिल्कुल नहीं। इशिका को समझ आ गया था कि यहाँ अभिमन्यु की बात कोई नहीं मानेगा तो वो गार्ड के सहारे उन सबको फोर्सफुली रोकेगा। इशिका आगे की तरफ बढ़ने लगी जबकि अभिमन्यु उसके साथ कुछ कदम पीछे चल रहा था। अभिमन्यु को किसी के पीछे चलने की आदत नहीं थी, लेकिन आज इशिका से कुछ कदम पीछे चल रहा था। ये देखकर ही उन गार्ड्स को समझ आ गया कि वो अभिमन्यु के लिए कितनी मायने रखती होगी। वहीं राधिका इस वक्त वीआईपी वार्ड में थी, जहां रूम के आगे एक लिविंग रूम बना हुआ था। लिविंग रूम के अंदर नक्श और आयशा साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। नक्श ने आयशा से कहा, मैंने अंकल को देखा, वो काफी परेशान हो गए थे, उन्होंने अब तक कुछ नहीं खाया है। मैंने डाइट से पूछा था, वो मॉम के होश में आने से पहले कुछ नहीं खाएंगे, आयशा ने जवाब दिया। कुछ देर में नक्श ने महसूस कर लिया था कि आदर्श कैसा भी इंसान क्यों ना हो, पर वो राधिका से बहुत प्यार करता था। उन्हें बेहोश देखकर उसकी हालत भी खराब होने लगी थी। अचानक ही नक्श को कुछ एहसास हुआ और वो बोला, वो एक आइडियल इंसान है, हर हस्बैंड वाइफ को ऐसा ही होना चाहिए और मैं उनसे सीखने की कोशिश करूंगा। आई एम सो सॉरी आयशा, जो मैं पहले इशिका के पीछे था और मेरे दिमाग में वही चलती रहती है, पर मैं आगे से कोशिश करूंगा कि उसके ख्याल से बाहर निकल पाऊं। कोई बात नहीं नक्श, पापा ने भी कुछ गलतियां की हैं। मालविका आंटी और इशिका के बारे में तो तुम जानते ही हो, उनकी वजह से मॉम और डैड के बीच में आज भी लड़ाई होती है, आयशा ने उदास होकर कहा। हाँ, नाजायज बेटियां और दूसरी औरत हमेशा रिश्तों के लिए खतरनाक होती हैं, नक्श ने हल्के गुस्से में कहा। उसकी मॉम डैड का रिश्ता भी अच्छा नहीं था, क्योंकि उसके डैड नकुल का कहीं और अफेयर था और उनकी भी एक बेटी थी। वो दोनों बातें कर रहे थे तभी लिविंग रूम का दरवाजा छटके से खुला। उन्होंने देखा सामने इशिका और अभिमन्यु आ रहे थे। थोड़ी देर पहले नक्श ने वादा किया था कि वो आयशा के साथ रिश्ते में बिल्कुल लॉयल रहेगा। जब नक्श ने इशिका को देखा तो वो गुस्से में बोला, इशिका क्या अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा जो तुम यहाँ पर वापस आ गई हो? साथ में अभिमन्यु भी था जो इशिका को हर हाल में प्रोटेक्ट कर रहा था। ये देखकर आयशा ने सबसे पहले अभिमन्यु से बात करते हुए कहा, चाचू मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस लड़की को यहाँ से ले जाइए, आप इसके पति हैं तो इसे प्रोटेक्ट करेंगे, इसके साथ रहेंगे, लेकिन मेरी मॉम की हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। इसी की वजह से मेरे मॉम को गुस्सा आया था और उनकी तबीयत खराब हुई थी। डॉक्टर ने साफ मना किया है उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस देने के लिए, कुछ ही देर में उन्हें होश आने वाला है और मैं नहीं चाहती कि ये लड़की उनकी आंखों के सामने रहे। आयशा की बात खत्म करते ही इशिका ने कहा, जब वो बेहोश हुई थी तब मुझसे बात करना चाहती थी, अब अगर वो नहीं चाहेंगी कि मैं उनके पास रहूं तो वो मुझे खुद जाने को बोल देंगी। इशिका प्लीज बंद करो ये सब, वो मेरी मॉम है और मैं अच्छे से जानती हूँ कि उन्हें क्या चाहिए, वो तुम्हें अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहती है, आयशा गुस्से में बोली। आयशा का साथ देते हुए नक्श उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, आयशा बिल्कुल ठीक कह रही है, मेरे होते हुए इशिका मिसेस सिंघानिया के कमरे में नहीं जा पाएगी। हमेशा की तरह नक्श इशिका के सामने परफेक्ट हस्बैंड होने का दिखावा कर रहा था, पर इशिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अभिमन्यु की तरफ देखा, अभिमन्यु ने अपने हाथ का इशारा किया तो दोनों गार्ड्स अंदर आ गए थे। अभिमन्यु ने इशिका का हाथ पकड़कर कहा, चलो अंदर चलते हैं। उन्होंने नक्श और आयशा को पूरी तरह इग्नोर किया और अंदर जाने लगे। तभी नक्श उनके सामने आने लगा, वो कुछ करता उससे पहले गार्ड्स ने नक्श को इस तरह पकड़ा जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो और साइड में कर दिया था। नक्श और आयशा देखते रह गए और इशिका ने सारा कंट्रोल ले लिया था। अभिमन्यु और इशिका कमरे के अंदर थे और बाहर दोनों गार्ड सिक्योरिटी के लिए खड़े हो गए। इशिका और अभिमन्यु अंदर गए तो उन्होंने देखा आदर्श वहां पर राधिका के पास बैठा हुआ था और उसका हाथ पकड़ रखा था। उसने एक नजर इशिका और अभिमन्यु को देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। ऐसे लग रहा था आदर्श के लिए किसी भी बहस से ज्यादा जरूरी राधिका की तबीयत थी।
आदर्श राधिका से बहुत प्यार करता था, ये इशिका पहले से ही जानती थी, लेकिन उन दोनों के बीच एक दूरी थी। इशिका को लगता था कि ये दूरी उसकी वजह से है क्योंकि वो आदर्श की नाजायज बेटी थी। राधिका को बीमार हुए अभी कुछ घंटे ही बीते होंगे कि आदर्श भी चेहरे से बीमार नजर आ रहा था। इशिका आदर्श को देख रही थी तभी अभिमन्यु ने धीरे से कहा, क्या हम इस कमरे को पूरी तरह खाली करवा देना चाहिए? उसका इशारा आदर्श की तरफ था कि अगर इशिका आदर्श के साथ अनकंफर्टेबल है तो वो उसे भी कमरे से बाहर करवा सकता था। वैसे भी अभिमन्यु आदर्श को पसंद नहीं करता था क्योंकि वो इशिका के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। आदर्श की हालत देखकर इशिका ने नामे सिर हिलाकर कहा, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। इशिका चुपचाप जाकर राधिका की दूसरी तरफ बैठ गई थी, वो बस इतना चाहती थी कि जब राधिका को होश आए तो वो उससे बात कर सके। जब अभिमन्यु को लगा कि इशिका वहां पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि आदर्श खुद ठीक हालत में नहीं था तो वो कमरे से बाहर आ गया। बाहर आने पर अभिमन्यु ने देखा एक गार्ड ने नक्श को पकड़ रखा था और वो बुरी तरह चिल्ला रहा था। नक्श ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम इस तरह मुझे पकड़कर नहीं रख सकते हो, मैं भी राजवंश फैमिली का मेंबर हूं और हम तुम्हें सैलरी देते हैं। नक्श की बात सुनकर गार्ड ने उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देखा। वो कोई नॉर्मल बॉडीगार्ड नहीं थे, वो अभिमन्यु के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड थे जिन्हें जरूरत पड़ने पर ही वो बुलाता था। इसमें राजवंश फैमिली का कहीं कोई रोल नहीं था। अभिमन्यु ने गार्ड को इशारा किया तो उसने नक्श को छोड़ दिया। सीधे अरमान वहां पहुंच गया। उसने वहां की सिचुएशन देखकर हैरानी से पूछा, आखिर यहां चल क्या रहा है? ये गार्ड्स यहां क्या कर रहे हैं? आयशा ने भारी आवाज में जवाब देते हुए कहा, अभिमन्यु चाचू ने पूरे वार्ड को अपने कब्जे में ले लिया है और इशिका को अंदर भेज दिया है। उन्हें जरा भी परवाह नहीं है कि मेरी मॉम होश में आते ही इशिका को देखेगी तो वो फिर से बेहोश हो जाएगी। पूरी बात जानते ही अरमान ने गुस्से में अभिमन्यु पर कहा, तुम अपनी पावर का गलत फायदा नहीं उठा सकते हो, अगर तुमने अभी इशिका को यहां से बाहर नहीं निकाला तो मैं भी स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा। जरूर लो, तुम्हें किसी ने रोका नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर तुमने यहाँ किसी भी तरह का तमाशा किया और उसकी वजह से मिसेस सिंघानिया की तबीयत खराब हुई तो उसके जिम्मेदार तुम होंगे, अभिमन्यु ने बेपरवाही से कहा। राधिका का नाम सुनते ही अरमान थोड़ा ठंडा पड़ गया। वहीं कमरे के अंदर इस बीच राधिका के हाथ हल्के से हिले। उसने कुछ पल के लिए अपनी पलकी झपकाई और फिर से बिल्कुल शांत हो गई थी। इशिका को लगा कि उसे वहम हुआ होगा, शायद नींद में राधिका हिल रही थी। बाहर अभिमन्यु और अरमान के बीच बहस जारी थी। अरमान ने सिर हिलाकर कहा, यकीन नहीं होता कि तुम एक बीमार औरत का नाम लेकर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो। तुमने मिस्टर और मिसेस सिन्हानिया को होस्टेज बनाया है, मैं पुलिस को बुला सकता हूँ। अरमान की बात समझते ही आयशा ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला। वो कोई हरकत करती उससे पहले गार्ड ने उसके हाथ से फोन छीन लिया था। आयशा ने अरमान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखकर कहा, मिस्टर सिंघानिया प्लीज कुछ कीजिए, अगर मॉम को होश आया और उन्होंने शिका को अपने सामने देखा तो मुझे डर है कि कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए, उनकी जान भी जा सकती है। अरमान कुछ कहता उससे पहले अभिमन्यु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यू नो वॉट अरमान, तुम पहले भी इतने बेवकूफ थे और आज भी तुम्हें लोगों को पहचानना नहीं आया। तुम इस तरह मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते हो अभिमन्यु, मुझे सब समझ आ रहा है, अरमान ने गुस्से में जवाब दिया। अगर समझ आ रहा है तो तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? चलो तुम खुद ही बताओ कि जब इशिका मिसेस सिंघानिया के सामने आई थी तब क्या उन्होंने गुस्सा किया था या उनके शब्दों से तुम्हें ऐसा लगा कि वो इशिका से नफरत करती हैं, अभिमन्यु ने पूछा। अरमान सोच में पड़ गया था। अभिमन्यु सही कह रहा था, जब इशिका मिसेस सिंघानिया के सामने गई थी तब गुस्सा होने के बजाय वो काफ़ी प्यार से पेश आ रही थी। उल्टा उनके चेहरे पर काफ़ी खुशी थी जब इशिका उनसे मिलने के लिए आई थी। ऐसा बहुत कम मामलों में होता है जब कोई औरत अपने पति की नाजायज़ औलाद को देखकर खुश हो। अरमान कन्फ्यूज हो गया था। उसने अपने अंकल से यही सुना था कि राधिका अपने टाइम में काफ़ी सख्त और डिसिप्लिन लड़की थी। अगर कोई उन्हें हर्ट करता था तो वो उसे आसानी से जाने नहीं देती थी, फिर वो इशिका से प्यार कैसे कर सकती थी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात से अग्री करता हूँ कि मिसेस सिंघानिया इशिका को पसंद करती होंगी, लेकिन फिर भी तुम इस तरह जोर जबरदस्ती करके उनकी बेटी को अंदर जाने से नहीं रोक सकते हो, अरमान ने जवाब दिया। अभिमन्यु ने अरमान के बात का कोई जवाब नहीं दिया। वहीं कमरे के अंदर बाहर की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन ना तो आदर्श को और ना ही शिखा को कोई फर्क पड़ रहा था। वो दोनों ही एकटक राधिका को देख रहे थे। अचानक राधिका की आंखें खुली। इसी के साथ आदर्श और ऋषिका एक्साइटेड होकर जल्दी से खड़े हो गए।